नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक पर बात करने जा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक है हमारी वसीयत और विरासत
जी,
और इसका एक अध्याय है मथुरा के कुछ रहस्यमय प्रसंग। पंडित जी, आप जानते ही हैं, गायत्री परिवार के संस्थापक, 20वीं सदी के एक बड़े आध्यात्मिक विचारक।
बिल्कुल।
तो इस अध्याय में ना उन्होंने मथुरा में अपने प्रवास के दौरान की कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जो मतलब सामान्य तर्क से एकदम परे लगती हैं।
हाँ, अद्भुत प्रसंग है वो।
पूज्य गुरुदेव खुद बताते हैं कि जब उन्हें हिमालय से वो बड़े बड़े काम करने का मार्गदर्शन मिला
जी,
तो उनके पास ना तो साधन थे, ना कोई साथी, ना वैसा अनुभव भी था
जी।
तो ये सवाल मन में आता था कि भाई ये सब होगा कैसे। लेकिन फिर जैसा पुस्तक में है, चीजें बड़े आश्चर्यजनक ढंग से होने लगी।
हाँ, एक के बाद एक।
तो चलिए इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं आज।
जरूर।
तो सबसे पहले बात करते हैं लेखन कार्य की, विशाल लेखन कार्य। पूज्य गुरुदेव ने नियम बनाया कि रोज 4 घंटे लिखना है। और उन्हें ऐसा लगता था जैसे जैसे कोई बोल रहा है और वो लिख रहे हैं। उन्होंने तुलना की है व्यास जी और गणेश जी से।
हाँ, जैसे व्यास जी बोल रहे हो और गणेश जी लिख रहे हो।
हाँ, चारों वेद, 108 उपनिषद, पुराण, स्मृतियां, दर्शन, सैकड़ों मौलिक पुस्तकें लिख डाली
अकेले
अकेले। अब सोचिए, इतना गहरा, इतना बड़ा साहित्य कोई एक व्यक्ति कैसे कर सकता है?
यही तो रहस्य है। वो खुद कहते थे कि कलम और उंगलियां मेरी हैं, पर लिखवाने वाली शक्ति कोई और है, कोई अदृश्य शक्ति।
बिल्कुल। और फिर ये सिर्फ लिखने तक नहीं रुका।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
अब इतना लिखा है तो छपेगा कैसे? प्रकाशन के लिए प्रेस चाहिए।
हाँ, प्रेस की जरूरत तो थी ही। और पुस्तक में जिक्र है कि शुरुआत हुई एक बहुत ही साधारण से हैंड प्रेस से।
अच्छा, हैंड प्रेस से।
जी, लेकिन फिर धीरे धीरे, मतलब जैसे रास्ता बनता गया, ट्रेडल आई, फिर सिलेंडर मशीन, फिर ऑटोमेटिक, यहाँ तक कि ऑफसेट मशीनें भी।
मारे वाह।
और ये सब भी बड़ा सहज रूप से होता गया। ऐसा लगता था मानो कोई है जो ये सब व्यवस्था कर रहा है पीछे से।
जैसे कोई राह दिखा रहा हो।
बिल्कुल।
फिर एक और उदाहरण है अखंड ज्योति पत्रिका का। पूज्य गुरुदेव ने शुरू में प्रयास किया तो कोई 2000 ग्राहक बने।
जी, लगभग 2000।
लेकिन फिर बिना किसी विज्ञापन के, बिना कोई खास मार्केटिंग के, वो संख्या बढ़ते बढ़ते 1.5 लाख तक पहुंच गई।
1.5 लाख। और अगर दूसरी भाषाओं की पत्रिकाएं मिला लें तो ये संख्या और भी ज्यादा थी।
हाँ, ये तो उस समय के हिसाब से तो मतलब एक रिकॉर्ड ही था, वो भी बिना किसी प्रचार के।
सही कहा। ये भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी थी जो सामान्य कारण कार्य संबंध से समझानी मुश्किल है।
सही बात है।
और फिर आता है मथुरा का हजार कुंडीय यज्ञ।
हाँ, ये तो बहुत सुना है इसके बारे में।
हजार कुंड, जी, 1000 अग्नि कुंडों वाला महायज्ञ। कहते हैं महाभारत के बाद इतना बड़ा यज्ञ नहीं हुआ।
बाप रे।
और इसमें कई बातें रहस्यमयी हैं। पहली बात, देश भर से 1 लाख गायत्री उपासक बुलाए गए।
1 लाख?
हाँ, और ये वो लोग थे जिनसे पूज्य गुरुदेव का कोई सीधा परिचय नहीं था, व्यक्तिगत जान पहचान नहीं।
अच्छा, फिर वो आए कैसे?
बस निमंत्रण मिला और वो सब अपने खर्चे पर चले आए मथुरा। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है।
ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है।
बिल्कुल। और दूसरी बात, रोज करीब 10 लाख दर्शक आते थे।
10 लाख रोज?
हाँ जी, अनुमानित। और उन सबको 7 मील के घेरे में ठहराया गया था और 5ों दिन निःशुल्क भोजन कराया गया।
बिना पैसे भी भोजन, इतने लोगों का?
जी हाँ। और वर्णन ये है कि भोजन सामग्री सीमित होते हुए भी कभी कम नहीं पड़ी, बल्कि अंत में बच भी गई।
मतलब अक्षय हो गई।
हाँ, वही जिसे कहते हैं अक्षय हो जाना। और पूरी व्यवस्था इतनी बढ़िया थी कि हजारों ट्रेन्ड कर्मचारी भी शायद न कर पाते।
तो फिर ये सब हुआ कैसे? प्रबंधन, पैसा, लोग?
पूज्य गुरुदेव तो उसे पूरी तरह से उसी अदृश्य सत्ता का खेल, उसी का प्रबंधन मानते थे। वो कहते थे कि सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि मुनि भी इसमें मदद कर रहे थे।
सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि?
जी।
और इसी तरह गायत्री तपोभूमि का निर्माण, वो भी तो है।
हाँ बिल्कुल। एक छोटी सी इमारत से शुरू हुआ और देखते ही देखते एक विशाल प्रज्ञानगर खड़ा हो गया।
लोग देखकर चौंकते होंगे कि भैये, एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति ये सब कैसे कर रहा है।
चौंकते ही थे, लेकिन यहाँ भी पूज्य गुरुदेव ने श्रेय कभी खुद नहीं लिया। वो हमेशा कहते थे कि मेरी पीठ पर कोई शक्ति काम कर रही है।
उन्होंने वो कृष्ण और अर्जुन वाला उदाहरण दिया है ना।
हाँ बिल्कुल। जैसे अर्जुन के रथ के सारथी कृष्ण थे, रथ अर्जुन चला रहे थे, पर जीत का, दिशा का श्रेय सारथी कृष्ण को था।
तो मतलब इन सारे प्रसंगों का सार यही है कि पूज्य गुरुदेव खुद को सिर्फ एक माध्यम मानते थे।
एकदम। एक निमित्त, एक कठपुतली जिसे कोई और नचा रहा है। उनका पूरा जीवन, उनका सारा काम इसी समर्पण भाव पर टिका था कि असली करने वाला कोई और है,
और यही उनकी जीवन साधना का केंद्र भी था।
जी,
यहाँ उद्देश्य केवल चमत्कार गिनाना नहीं है, बल्कि उस नजरिए को समझना है जहाँ कर्तापन का भाव ईश्वर को सौंप दिया गया है।
तो हमने ये जो कुछ प्रसंग देखे मथुरा के, वो विशाल लेखन कार्य हो, प्रेस का विकास, पत्रिका का फैलना, हजार कुंडी यज्ञ या फिर तपोभूमि का निर्माण, इन सब में एक बात कॉमन है,
हाँ,
कि ये सब मानवीय प्रयासों की जो सामान्य सीमाएं होती हैं, उनसे कहीं आगे जाके घटित होते दिखे। तो इसका क्या मतलब निकालें हम?
देखिए, ये वृत्तांत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। ये दिखाते हैं कि व्यक्तिगत प्रयास और किसी ऊंची शक्ति का मार्गदर्शन या मदद, इनके बीच कोई संबंध हो सकता है, जैसा पूज्य गुरुदेव ने अनुभव किया और लिखा। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि क्या जो बड़े बड़े काम दुनिया में होते हैं वो सिर्फ इंसान की मेहनत से होते हैं,
या उनमें कभी कभी कोई अनदेखी शक्ति, कोई प्रेरणा भी सहायक होती है, जैसा इन प्रसंगों में लगता है।
पूज्य गुरुदेव ने तो पूरी विनम्रता से कहा कि ये सब ईश्वर भी इच्छा और मार्गदर्शन से हुआ।
जी,
तो यहाँ श्रोताओं के लिए भी एक सोचने की बात है, क्या हमारे अपने जीवन में भी कभी ऐसे पल आते हैं जिन्हें हम सोचते हैं कि ये तो बस मेरी मेहनत है, या ये तो संयोग से हो गया?
हाँ, हो सकता है,
पर शायद उनमें भी किसी अनदेखे संयोग का, किसी प्रेरणा का हाथ हो, इस पर सोचा जा सकता है।
बिल्कुल, ये विचार करने योग्य बात है।